ये रेडियो नेपाल है। हिंदी समाचार में आपका स्वागत है। मैं मीनू प्रधान। आरंभ में आज के मुख्य समाचार। जलवायु परिवर्तन के कारण आए संकट पर राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने जताई चिंता। पर्यावरण को स्वच्छ और संतुलित बनाए रखने पर दिया जोर। आज एक ही दिन नेकपा माओवादी केंद्र की 6,743 वार्डों में हुआ वार्ड सम्मेलन शुरू। राष्ट्र हितों को केंद्र में रखकर स्वतंत्र पर राजनीति बनाने की बात पर परराष्ट्र मंत्री डॉक्टर नयन खड़का ने दिया जोर। और यूरोप में कोरोना संक्रमण में हो रही बढ़ोतरी को देखते हुए विभिन्न देशों ने कोरोना के विरुद्ध टीकाकरण को किया अनिवार्य। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने जलवायु परिवर्तन की वजह से सृजित संकट के विषय में चिंता जताई। आज पुनर्निर्मित स्वयंभू स्थित ज्ञानमाला भजन खला का उद्घाटन करते हुए राष्ट्रपति भंडारी ने कहा कि जलवायु परिवर्तन के कारण संपूर्ण विश्व ही संकट की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने काठमांडू के प्रदूषित वातावरण पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि प्रदूषित वातावरण जन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है और इससे बचने के लिए पर्यावरण को स्वच्छ और संतुलित बनाए रखना वर्तमान समय की मांग है। नेकपा माओवादी केंद्र का वार्ड सम्मेलन आज से शुरू हुआ है। आज एक ही दिन 6,743 वार्ड में नेतृत्व चयन के लिए वार्ड सम्मेलन हुआ। ये जानकारी नेकपा माओवादी केंद्र के केंद्रीय निर्वाचन आयोग के सदस्य हरिराम श्रीपाली ने दी। साथ ही उन्होंने बताया कि आज ही सुदूर पश्चिम के 88 पालिकाओं की सभी वार्डों और देश भर की 77 जिलों की सभी वार्डों में निर्विरोध नेतृत्व का चयन भी किया गया है। माओवादी केंद्र के केंद्रीय निर्वाचन आयोग के प्रमुख विष्णु पुकार श्रेष्ठ ने बताया कि निर्वाचन कराने के लिए आयोग ने प्रदेश में 7 सदस्यीय, पालिका में 5 सदस्यीय और वार्ड तहों में 3 सदस्यीय निर्वाचन समिति का गठन किया है। परिवार दल का राष्ट्रीय महाधिवेशन आज से काठमांडू में शुरू हुआ है। महाधिवेशन का उद्घाटन करते हुए नेकपा एमाले के अध्यक्ष केपी शर्मा ओली ने कहा कि राजनीतिक हिसाब से दिख रही मौजूदा असहज परिस्थिति को लोकतांत्रिक अभ्यास द्वारा सहज बनाना जरूरी है। कल तक चलने वाले महाधिवेशन से अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महामंत्री, सह महामंत्री और कोषाध्यक्ष सहित 101 सदस्यों की नई कार्य समिति निर्वाचित होगी। ये बात परिवार दल तीसरे राष्ट्रीय महाधिवेशन तैयारी समिति के अध्यक्ष एकनाथ ढकाल ने बताई। नेकपा एमाले के अध्यक्ष केपी शर्मा ओली ने कहा कि हमारी पार्टी अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ने में सक्षम है। काठमांडू महानगर पालिका द्वारा आज राजधानी में आयोजित कार्यक्रम में अध्यक्ष ओली ने कहा कि एमाले किसी की बैसाखी के बिना ही अपने बलबूते पर चुनाव लड़ने में सक्षम है। उन्होंने दावा किया कि एमाले को हराने के लिए सारे के सारे राजनीतिक दल भी मिल जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेकपा समाजवादी के अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल ने कहा, हमारी पार्टी से सरकार में सहभागी हुए मंत्रियों को स्पष्ट निर्देश किया गया है कि वे कोई भी गलत काम न करें। राष्ट्रीय स्वास्थ्य कर्मी संघ नेपाल द्वारा भक्तपुर के बोड़े में आयोजित राष्ट्रीय जमघट के समापन कार्यक्रम में अध्यक्ष नेपाल ने कहा कि उन्होंने अपनी पार्टी के मंत्रियों को भ्रष्टाचार से मुक्त होकर हकम रखने का निर्देश किया है। साथ ही उन्हें गलत काम करने पर कार्रवाई की जाने की चेतावनी भी दी गई है। उन्होंने साफ किया कि नेकपा एससी सरकार में सहभागी मंत्री ने अगर कोई गलत काम किया तो उन पर कार्रवाई करते हुए उन्हें वापस बुला लिया जाएगा। परराष्ट्र मंत्री डॉ नयन खड़का ने परिवर्तित संदर्भ में राष्ट्रीय सहमति के आधार पर ही परराष्ट्र नीति बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया। आज त्रिभुवन विश्वविद्यालय अंतर्गत नेपाल तथा एशियाई अध्ययन केंद्र सिनास द्वारा काठमांडू में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने ये बात कही। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि विश्व परिवेश में आए बदलाव और भू राजनीतिक स्थिति के आधार पर परराष्ट्र नीति बनाने को लेकर वे क्रियाशील हैं। संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मंत्री राजेंद्र श्रेष्ठ ने कहा कि अध्यादेश के जरिए संघीय निजामती आईन लाया जा रहा है। जनता समाजवादी पार्टी द्वारा आज संखुआ सभा के जिला मुख्यालय खांतबारी में बुलाए गए प्रेस मीट में मंत्री श्रेष्ठ ने ये बात कही। उन्होंने बताया कि निजामती आईन को संसद में ही विचार विमर्श करके लाने का बार बार कोशिश की गई, लेकिन दलों की खींचातानी के कारण यह संभव नहीं हो पाया। ये बताते हुए कि आईन न बन पाने के कारण इस समय प्रशासनिक क्षेत्र में 40% और प्राविधिक क्षेत्र में 60% कर्मचारियों का अभाव है। उन्होंने कहा, अध्यादेश आने के बाद कर्मचारी तंत्र के भीतर मौजूदा गतिरोध समाप्त होने को लेकर वे विश्वस्त हैं। समाचार रेडियो नेपाल से प्रसारित किए जा रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
ए छोरा, के छ हाल खबर? पढाई कस्तो चल्दैछ?
सबै राम्रै चल्दैछ। अनि त्यहाँ के छ बुवा?
यहाँ पनि सबै राम्रो छ। ला, तेरो आमासँग कुरा गर।
पर्दैन पर्दैन, किन धेरै पैसा खर्च गर्नुहुन्छ?
किन टेन्सन लिन्छस् बाबु? हामी जस्ताको लागि एनटीसी को कल इन्डिया प्याक छँदैछ नि। इन्डिया कल गर्न त कस्तो सस्तो पो छ त त्यसमा।
ल त्यसो भए ढुक्कले कुरा गरौँ न त।
सेवा सुचारू गर्नका लागि *1415# गर्नुहोस्।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाकी समाचार। अर्थमंत्री जनार्दन शर्मा ने समाजवाद के आधार निर्माण के लिए सामुदायिक पूंजी परिचालन करने की बात पर जोर दिया। आज नेकपा माओवादी केंद्र 5 सर काठमांडू जिला संपर्क समन्वय समिति के सम्मेलन में अर्थमंत्री शर्मा ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि सामुदायिक पूंजी से समाजवाद का आधार तैयार होगा, इसलिए अब आगे की कार्यदिशा उत्पादन पर आधारित सामुदायिक पूंजी निर्माण होगी। आगे उन्होंने कहा कि समाजवाद के प्रारंभिक चरण में पार्टी कमेटी उत्पाद और रोजगारी के क्षेत्र में नेतृत्व करेगी और साथ ही सांस्कृतिक रूपांतरण का अभियान भी साथ साथ आगे बढ़ाया जाना जरूरी है। जनता समाजवादी पार्टी की कार्यकारिणी समिति बैठक कल पार्टी केंद्रीय कार्यालय बाल कुमारी ललितपुर में सुबह 11 बजे होगी। बैठक में राजनीतिक परिस्थिति लगायत समसामयिक विषयों में विचार विमर्श किया जाएगा। ये जानकारी पार्टी कार्यालय के प्रमुख प्रकाश अधिकारी ने दी। आज देशभर में 1,03,209 लोगों को कोरोना वैक्सीन की डोज दी गई। इसी बीच आज देशभर में 444 लोग कोरोना संक्रमण से मुक्त हुए, जबकि कोरोना के 242 नए मामले सामने आए हैं। वहीं एक संक्रमित की मौत हो गई। ये जानकारी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय ने दी है। मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक कोरोना संक्रमण से मुक्त होने वालों की हालिया दर 97.7% है। सुर्खियत की वाराह ताल गांव पालिका 5 बड्डी चौर से चीते की खाल के साथ अछाम पंच देवल नगर पालिका 8 के 35 वर्षीय कमल शाही सहित 4 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनके पास से पुलिस ने चीते की 3 खाल बरामद की है। पुलिस ने बताया कि इन सभी को बड्डी चौर स्थित एक होटल से गिरफ्तार किया गया और इस मामले की पूरी जांच की जा रही है। भारत से 4 बच्चों का उद्धार कर नेपाल लाया गया है। नेपाली महावाणिज्य दूतावास के सहयोग में भारत के पश्चिम बंगाल के विभिन्न जिलों से इन बच्चों का उद्धार किया गया है। इन बच्चों में उदयपुर, काठमांडू, मोरंग और सिंधौली जिले के 2 लड़के और 2 लड़कियां हैं। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। यूरोप में कोरोना संक्रमण में हो रही बढ़ोतरी को देखते हुए विभिन्न देशों ने कोरोना के विरुद्ध टीकाकरण को अनिवार्य किया है। ऑस्ट्रिया ने 1 फरवरी से टीकाकरण को अनिवार्य बना दिया है। यहां के चांसलर एलेक्जेंडर शालिनबर्ग ने इस कदम को वायरस की लहरों के दुष्चक्र को तोड़ने का एक लौता तरीका बताया। यूरोपीय संघ में टीकाकरण अनिवार्य करने वाला ऑस्ट्रिया एक लौता देश है, लेकिन कई देशों की सरकारें पाबंदियां लगा रही हैं। स्लोवाकिया ने गैर जरूरी सामान की सभी दुकानों और शॉपिंग मॉल में उन लोगों के जाने पर पाबंदी लगा दी है जिन्हें कोविड रोधी टीके नहीं लिए हैं। ऐसे लोग सार्वजनिक कार्यक्रमों में भी नहीं जा सकेंगे और काम पर जाने के लिए भी उन्हें 2 बार जांच करवानी होगी। स्लोवाकिया की 55 लाख की आबादी में महज 45.3% का पूर्ण टीकाकरण हुआ है। सिर्फ मध्य और पूर्वी यूरोप के देश ही नहीं जो वायरस के प्रकोप को झेल रहे हैं, बल्कि पश्चिम के संपन्न देश भी वायरस से प्रभावित हैं। एक बार फिर यहां पाबंदियां लगा रहे हैं। रूस में कोरोना वायरस संक्रमण से आज 1,254 लोगों की मौत हो गई, जो एक दिन में मौत की सबसे अधिक संख्या है। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 21 से 23 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 6 से 8 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 22.8 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 7.8 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। जलवायु परिवर्तन के कारण आए संकट पर राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने जताई चिंता। पर्यावरण को स्वच्छ और संतुलित बनाए रखने पर दिया जोर। आज एक ही दिन नेकपा माओवादी केंद्र की 6,743 वार्डों में हुआ वार्ड सम्मेलन शुरू। राष्ट्रीय हितों को केंद्र में रखकर स्वतंत्र पर राजनीति बनाने की बात पर परराष्ट्र मंत्री डॉ नयन खड़का ने दिया जोर। और यूरोप में कोरोना संक्रमण में हो रही बढ़ोतरी को देखते हुए विभिन्न देशों ने कोरोना के विरुद्ध टीकाकरण को किया अनिवार्य। इसी के साथ हिंदी समाचार समाप्त हुए। सुनते रहिए रेडियो नेपाल। शुभरात्रि।